अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरुत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नमामि शरणानि अङ्गश्यामलीं शताभिरभितुं मन्दे कृतं देवरं जगदञ्जाबुदरोचि संविदधतमि पट्टं वरस्य श्रिया श्री श्री गुरु गौरांग राधा विनोद बिहारी और गिरिराज जी की कृपा से हम लोगों ने आज गिरिराज जी की आधी और परिक्रमा करके उसे पूरा किया। उद्धव कुंड में गए जहां उद्धव जी गोपियों की चरण धोली के लिए प्रार्थना किया था आसाम हो चरण करोड़ों करोड़ों जन्म में वहां पर करोड़ों करोड़ों घासें पैदा हुई हैं जिसके ऊपर से गोपियां अभिसार के लिए कृष्ण के पास मिल जाती। अभी गोवर्धन से जब आप लोग निकले तो बाएं तरफ में सखी स्थली यहाँ पर चंद्रावली पद्मा सभ्या इत्यादि सब सखियां रहती थी। उसके बाद में राधापुण्य में गए और वहां पर मदन मोहन के गोपीनाथ जी के सामने विभिन्न वक्ताओं जी ने राधा कुंड का महिमा वर्णन किया। फिर राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करने के बाद में आप लोग यहाँ पर लौटे। इस तरह से हमारी परिक्रमा अच्छी तरह से चल रही है। हमने बतलाया था पहले चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर में आए और हा कृष्ण कहते हुए जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के लिए दौड़े और किस प्रकार से मूर्छित हो गए और उसी समय में भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य भी आए थे। महाप्रभु जी को मूर्छित देकर के कहा आज तक हमने शास्त्रों में पढ़ा था प्रणय क्या चीज है, रूढ़ अतिरूढ़ और मादन इत्यादि को हमने देखा किंतु किसी मनुष्य के शरीर में हमने नहीं देखा था, इसलिए अनुमान होता है कि ये कोई महाभागवत ही है। दूसरे के हृदय में ये सात्विक भाव प्रणय इत्यादि नहीं प्रकट हो सकते। ऐसा सोच करके महाप्रभु तो मूर्छित पड़े हुए थे भावावेश में, अपने घर में ले गए और वहां जाकर के उनको इतने में नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, चंद्रशेखर आचार्य इत्यादि वहां पर पहुंचे। उनको पता चला कि महाप्रभु जी आए थे, भावाविष्ट होकर के गिर गए और भाव सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में गए हैं। वे लोग वहीं पर गए और बेड़ा कीर्तन कर करके कीर्तन करना आरंभ किया जोर जोर से। महाप्रभु जी हुंकार भर कर उठ खड़े हुए, उनका भावावेश कुछ कम हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, अकेले मत जाना जगन्नाथ जी का दर्शन करने, मैं जाऊंगा या गोपीनाथ आचार्य जाएंगे, वहां पर दर्शन करा करके ले आएंगे। कुछ दिनों के बाद, थोड़ी देर के बाद में गोपीनाथ आचार्य वहां आए और गदाधरी शायद एक आदमी और गदाधर
मुकुंद
वहां पर आए। कुछ तर्क वितर्क हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, आचार्य इनका परिचय जानना चाहता हूँ, नवीन सन्यासी का। उन्होंने कहा, नदिया वासी हैं, इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र या पुरंदर मिश्र हैं, नीलांबर चौकवर्ती
दौहित्र है,
ये बेटी के लड़के हैं, दौहित्र हैं। सुनकर के वे बड़े प्रसन्न हुए सार्वभौम
भट्टाचार्य,
क्योंकि उनके पिताजी विशारद जी का वहां पर संस्कृत का टोल था, पाठशाला थी बड़ी प्रसिद्ध। इसके बाद में महाप्रभु जी से उन्होंने कहा, गोपीनाथ आचार्य को मैं एक घर देता हूँ, अकेले में है, निर्जन में, वहीं पर इनको ले जाओ। गोपीनाथ आचार्य जी उनको दे आए और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पास में आए। दोनों में तर्क वितर्क हुआ। सार्वभौम जी ने कहा, क्या कहा, उनका खंडन क्या किया,
कौन कहेगा, तुम बोल सकता है तो बोलो। तो
पहले बोल दो।
So then, special mercy of Sri Guru Maharaja. Today we completed our Chola Parikram. That completes now our full Govardhan Parikram. So today we went to the place of Buddha, sent by Krishna from Mathura. He offered prayers to become a blade of grass there. Also, we did pronounce it as Sati Stari in the place of Chandravani, Saiga and her party. And there in front of Sisi Radha Gopinath, we heard from many, many devotees the glories of Sri Radhakund and Shyamkund. Then on the way here we passed through Kusum Sarova. So, continuing on the topics of Chaitanya Mahaprabhu, we heard how Srimad Mahaprabhu, after sannyas, he came down to Jagannath Puri. And in the ecstasy of Mahabharata, he entered the temple of Jagannath there. Being absorbed in ecstasy, he went to embrace Jagannath, but he fell unconscious before the temple. By good fortune, Sri Sarvabhauma Bhattacharya was there, and when he saw the ecstatic symptoms in the body of Mahabharata, he was thinking, I have read about this stages of Pranaya, Arudh and Adibhut Mahabhava, but I have never seen it before. I have never seen it in the body of anyone. Therefore, this young sannyasi, he must be a great Mahabhava. So he took Chaitanya Mahaprabhu in his unconscious state to his own home. Sometime later, Sri Nityananda Guru, Mukunda, Chandrasekhar, Gadadhar Pandit, when they heard that Mahaprabhu had come here, they also went to the house of Sarvabhauma Bhattacharya. That time Mahaprabhu was lying in an unconscious state. They began loudly to chant Sankirtan. So hearing that Sankirtan, Chaitanya Mahaprabhu's absorption decreased somewhat. He gained conscious with a loud roar. Then he stood up. That time Sarvabhauma Bhattacharya said, "Don't go alone to see Jagannath there. Either you should go with me or go with someone like Sri Gopinath Acharya." Sometime later, Sarvabhauma Bhattacharya was inquiring, "Who is this young sannyasi? Where is he from?" And Sri Gopinath Acharya informed him, "His name is Vishwanath Mishra. He is the son of the daughter of Nilambara Chakravarti Thakur." When Sarvabhauma Bhattacharya heard that, he became very much pleased because there was a very deep relationship between his own father and that of Nilambara Chakravarti Thakur. They opened one Sanskrit school together. So then there was some, Sarvabhauma Bhattacharya said, "I will give you a house, a very solitary place belonging to my maternal auntie." So after Gopinath Acharya put Mahaprabhu there, he came back alone, and there was a great discussion between Sarvabhauma Bhattacharya and Sri Gopinath Acharya. And we'll hear the contents of that conversation from Pujapad Purima.
Om ंद्रायुरादिकाय कदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय पञ्चाकल्पस्वरूपश्च कृपासिन्धुभयेवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सर्वाग्नि परमाराध्यतोमद्योगुरुपार्वत्मनित्रिलामदित्वं विष्णुपावत्सर्वप्रसन्नम् भक्तिदान बामन गोस्वामी महाराज जी चरण सरज यदि नमन करते दंड वस्तु की ज्ञापन तत्पश्चात मुझे शिक्षा हमने कलिला कवि सोम विष्णु पाल भक्त दास तथा विष्णु महाराज ओम विष्णु पाल परिषद का चार प्रदेश का दिशा है भक्त दास नारायण गोस्वामी महाराज जी चरण सरज यदि नमन करते दंड वस्तु की ज्ञापन उपस्थित सिद्धि पाद गण वैष्णव गण सज्जन मित्र मात्र विदेश चरण जगा के कदम को बल महाराज आदेश करे हैं गोपीनाथ आचार्य एवं सार्वभौम पंडित शिष्य मध्य जिस समस्त महाप्रभु ईश्वरता नहीं जे भिन्न भिन्न मत पसंद कर सम्बन्धे आलोचना वासुदेव सार्वभौम विद्यानगर नवद्वीप विद्यानगर वासी महेश्वर विशारदेव पुत्र দুই পুত্র ছিল মধুসূদন বাচস্পতি এবং বাসুদেব সার্বভৌম। বাসুদেব সার্বভৌম রাজপণ্ডিত ছিলেন, পুরী উড়িষ্যার রাজপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি গৃহস্থ হয়েও সন্ন্যাসী সন্ন্যাস প্রদান করতেন এবং সন্ন্যাসীদের নানা প্রকার বেদান্ত শিক্ষা গ্রহণ করাতেন। চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে গোপীনাথ আচার্য মুকুন্দপুর পূর্ব পরিচয়ে পরিচিত। গোপীনাথ আচার্য হলেন বিশারদের জামাতা অর্থাৎ বাসুদেব সার্বভৌম শ্যালক গোপীনাথ আচার্য ভগিনী কথা। গোপীনাথ আচার্য মুকুন্দ প্রভুকে দর্শন করে তার পূর্ব পরিচয়ে পরিচিত হয়ে তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন যে তিনি কে। তো বললেন, মহাপ্রভু জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র এবং নবদ্বীপ বাসী নদিয়া বাসী। তার সাথে তিনি সন্ন্যাস নেওয়ার পরে আমরা তার সাথে এখানে এসে উপস্থিত হই। তো এইভাবে বাসুদেব সার্বভৌম গোপীনাথ আচার্যকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলছেন, তিনি কাটোয়াতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, নাম হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। এই শুনে বাসুদেব সর্ব বললেন, শ্রীকৃষ্ণ নাম সর্বোত্তম, কিন্তু চৈতন্য এই যে ভারতী যেসব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস দিয়েছেন সেটি মধ্যম অধিকার। সুতরাং এনাকে যদি এনার প্রতি আমার খুব স্নেহ অবশ্যই এনার ভাব ইত্যাদি দেখে আমার খুব প্রীতি বাড়ছে, এনাকে বেদান্ত শ্রবণ করিয়ে আমি উন্নত করতে চাই। আর এনি যদি চান তাহলে এনাকে যোগপত্র দিয়েও আমি উন্নত সম্প্রদায়ে আমি নিত করতে পারি। তখন মহাপুরুষকে নিয়ে গোপীনাথ আচার্য সর্বমুখে বললেন, এনার কোনো বাহ্য অপেক্ষা নাই, বাহ্য অর্থাৎ মধ্যম কি উত্তম, ইনি ভগবান, ইনি কলিকালে জীবকে উদ্ধার করার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তখন শিষ্যগণ তার তর্ক বিতর্ক শুরু করল। শিষ্যগণ বলতে লাগলেন, ঈশ্বর তিনি তো ত্রিযুগ, তিনি ত্রিযুগে অবতীর্ণ হন, তিনি তো প্রতিযুগে আসেন না, বিশেষত কলিকালে আসার তার কথা নয়, শাস্ত্রের কোথাও প্রমাণ নাই। আর তিনি যে ভগবান তাকে আপনি ছিলেন কি করে? তদুত্তরে তিনি বললেন, দেখো শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ অনুমান শব্দ এবং ঐতিহ্য চার প্রকার প্রমাণ আছে। তার মধ্যে শিষ্যগণ বললেন, অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব সাধিত হয়, তা ঈশ্বরের জগতের যে কারণ কার্য সমন্বয় জগৎ পরিণত হয়েছে, সে কার্য দেখে কারণকে অনুমান করা হয়, সে কার্য জগৎ যখন পরিণত হয়েছে তখন এই কারণে যিনি একজন আছেন এই প্রকার অনুমান। অর্থাৎ উদাহরণ দিয়ে যেমন বলা হয় যে পর্বতে ঘুম ধোঁয়া রেখে বোঝা যায় যে সেখানে নিশ্চয়ই কোনো অগ্নি আগুন দেখা যায়, আগুন থাকতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্ব অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অতএব আপনি কি করে জানেন? তো গোপীনাথ আচার্য বলেন, ঈশ্বর তত্ত্ব অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয় না, ঈশ্বর তত্ত্ব অনুমান প্রমাণ নয়, ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞানী, ঈশ্বরের কৃপায় কৃপায় যার প্রতি হয় তিনি ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তখন বললেন, ঈশ্বরের কৃপায় হয় তো যাহারে সেই ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে। নায়মাত্মা প্রবচনে ন লক্ষ্য ন মেধয়া বহুনা সুতরাং জমিন পরিশ্ব বৃত্তি স্থান লক্ষ্য। যাকে ভগবান কৃপা করেন তিনি কেবল ভগবানকে জানতে পারেন। সূর্যকে যদি কেউ জোর করে জানবার চেষ্টা করে, দেখবার চেষ্টা করে রাত্রিকালে, সে যেন সম্ভব হয় না। সূর্য যদি কৃপা করে উদিত হন তার প্রতীক্ষায় আমরা সেই সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে সূর্যকে আমরা জানতে পারি, বুঝতে পারি। ঠিক তদ্রূপ এই প্রকার শোনার পরে তখন বললেন যে তিনি তো ত্রিযুগ, সুতরাং কলিকালে তো কোনো ভগবানের অবতার নাই। তখন সর্বমুখে বললেন, আপনি তো পণ্ডিত বিদ্বান, সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি আপনার দক্ষতা আছে, মহাভারত এবং শ্রীমদ ভাগবতের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আপনি সেটি দর্শন করতে পারছেন না, কি প্রমাণ আছে মহাভারতে এবং শ্রীমদ ভাগবতে? বললেন, আসন বন্ধন তৈরস্য বৃন্দত অনুজীবন তরুণ শুক্ল রক্ত তথা অবিকল জানেন কৃষ্ণতা আন্দোলন। কলিকালে তিনি কি বর্ণ ধারণ করবেন এই কথা বলা আছে। বর্তমানে তিনি দর্গাচার্য বলে ইনি কৃষ্ণমূর্তিতে এসেছেন, ইনি কি বর্ণ। আর বলে না সুবর্ণ বর্ণ রেমাঙ্গল বর্ণ চন্দনাঙ্গতি সন্ন্যাস কৃষ্ণ শান্তি নিশ্চয় শক্তি পরায়ণ। মহাভারতে প্রমাণ দিলেন যে সন্ন্যাস মূর্তি ধারণ করে কলিকালে ছন্ন অবতার গ্রহণ করবেন। কৃষ্ণ বর্ণন কিসা কৃষ্ণ সাঙ্গ বান্ধব বাস্তব যশোই সাঙ্গের চরম প্রাগের জয়ন্তী শুনে না। যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারাই কেবল নাম সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা এই গৌর উপাসনা অর্থাৎ কৃষ্ণ উপাসনা গৌর কি কৃষ্ণের উপাসনা করবে। এবং সেই কৃষ্ণ বর্ণ যা সদা মুখে কৃষ্ণ বর্ণের কৃষ্ণ নামের দ্বারা জগৎকে তিনি প্লাবিত করবেন প্রেমের দ্বারা, সেই চৈতন্য মহাপ্রভু বাচ্চে তিনি গৌরকান্তি গৌরকান্তি এবং অন্তরে কৃষ্ণ মূর্তি অর্থাৎ রাধা ভাবতী সুবলিত তরুণ বহু সুন্দর সাঙ্গ পাঙ্গ অঙ্গ উপাস্ত্র ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে তিনি সহ অবতরিত। এই সমস্ত প্রমাণ দিলেন। সকল বললেন তিনি যুগ এই জন্যে বলা হয়েছে যে কলিকালে তার লীলাবতার নাই, লীলাবতার নাই এই জন্য ভগবানের ত্রিযুগ শব্দ বলা হয়েছে। প্রতি যুগেই যুগাবতারও আছে, প্রতি যুগে ভগবান যুগে যুগে আসেন এবং যুগধর্ম পালন করেন, তাকে যুগাবতার বলা হয়। লীলাবতার রামচন্দ্র ইত্যাদি সব লীলাবতার, সেটি প্রতি যুগে আসে না, তিন যুগে আসেন, এই জন্য তাকে ত্রিযুগ বলা হয়েছে। অতএব আপনার এই সমস্ত জানা থাকা সত্ত্বেও আপনি ওই ঈশ্বরের কৃপালে পাননি, এই জন্য আপনার এটা গ্রহণ করছে না। তখন বললেন যে তোমার যে ঈশ্বরের কৃপালে হয়েছে তার কি প্রমাণ? বললেন দেখো ঈশ্বর তো বস্তু বিষয়ে জ্ঞানই হলো বস্তু জ্ঞান, অতএব বস্তু বিষয়ে আমার জ্ঞান হয়েছে সেটা তোমার যখন হবে তখন তুমিও বুঝতে পারবে সেই বস্তু কি প্রকার। চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে এই সমস্ত নানা প্রকার যুক্তি নানা প্রকার মত ইত্যাদি সব দিয়ে সার্বভৌম পণ্ডিতকে জানাতে চাইলেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান এবং তার মধ্যে যে সমস্ত ভাব ইত্যাদি সুদীপ্ত ভাব ইত্যাদি দর্শন করেছেন, দর্শন করেও আপনারা এখনো পর্যন্ত বিশ্বাস করুন না, একটি বড় মন্দ ভাব। ভগবান যখন কৃপা করবেন আপনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবহিত হবেন, তখন তার কৃপায় আপনি তাকে জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন।
In English, what dialogue about Bhagavat Tattva between Gopinath Acharya and Sarvabhaum Bhattacharya?
Om Agnanati Vrantasya Kinanjana Shlakaya Chakshu Vitam Jena Tasman Shri Gurve Namaha Bharatata Patru Patitana 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Shri Vatana Kota Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So Shri Gurudev, he has ordered me to speak on the dialogue between Gopinath Acharya and Shri Sarvabhaum Bhattacharya. So as has been explained already, when Sri Chaitanya Mahaprabhu, he went into the temple of Lord Jagannath, seeing Lord Jagannath, then he went to a state of ecstasy and he fainted. The gods there, seeing him in that state, they were about to beat him with sticks. But Sri Sarvabhaum Bhattacharya could understand that this personality, he's manifesting very, very exalted states of consciousness that only can be manifested by Nitya Siddha devotees of the Lord. So then he had Sri Chaitanya Mahaprabhu take him to his residence. In the meantime, Lord Nityananda Prabhu and others, they came. And then with loud chanting, Chaitanya Mahaprabhu was brought back to consciousness. Afterwards, Sri Sarvabhaum Bhattacharya was asking that who is this personality? That who has initiated him? It was explained that he had been initiated by Sri Keshava Bharati. So, because Sri Sarvabhaum Bhattacharya, he was like guru of so many Mayavadi sannyasis, he said, oh, but he should be initiated into the Sarva group, that this is first class, that I will initiate him. Then Gopinath Acharya became very disturbed. He said that this personality is the supreme personality of Godhead, that he does not need to be initiated into any group like this. Then Sarva Bhattacharya, he said, how are you saying such things? What is the proof? Sarvabhaum Bhattacharya said that the Lord is known, that he is Tri-Yuga, this is one of his names, that he does not appear in Kali-Yuga. But then Gopinath Acharya recounted, he said, oh, that because your heart is crying, then you cannot understand the truth of the Lord. That actually in scripture when it says that the Lord is Tri-Yuga, it means that he comes and he performs his, that the Lila Avatar is in three yugas. But actually the Yuga Avatar, he appears in every yuga. And then he gave evidence of scripture. That the Lord, He will appear in Kalyuga, Krishna Bhanam, that He will always be chanting the name of Krishna, and also Krishna Bhanam Krishna Akrishna, and that His complexion will be not Shyam complexion, not Krishna. Sarvopangata Pashadam, that He will appear with His associates, His astras, with His angas, His limbs, Lord Nityananda, Advaita Acharya, His associates, Parishads, like Gadadhar Pandit and his Ashra, the holy name. He also quoted from Mahabharata, Subarnabhano he mango, Varadas, Chadan, Gadi, Sanyas, Krishna, Shanto, Nishta, Shanti, Kavani. That the Lord will appear, Subarnabhano he mango. He'll appear with a very beautiful golden complexion. He'll be molten gold, and his lips will be decorated with chanda, with sandalwood paste. He'll accept the sannyas order, and he'll be very peaceful, and he will also be very, he'll bring peace to all others by chanting of the holy name of the Lord. So then, explaining that evidence is there, but because of your dry logic, you will not be able to understand it. So Abu Bhakta Acharya and Gopinath Acharya, they were brothers of the Lord. So they had a very, very close, intimate relationship. Later on, Gopinath Acharya, he went with another devotee, and they were very disturbed, and they explained to Sri Chaitanya Mahaprabhu what happened. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was very, very calm, very peaceful, and he said, oh, there's no problem, that actually, Sarvabhauma Acharya, he's thinking of my best interest. So Sarvabhauma Acharya, he suggested that because this sannyasi is very young, that he should hear Vedanta. That I will explain to him Vedanta, and this way I'll fix him up in the sannyas. So then it was arranged next day that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he went and he sat down to listen to the commentary of Vedanta being explained by Sri Sarvabhauma Bhattacharya, Sharira Prasya by Shankaracharya. So then, this was explained for 7 days. After Sri Sarvabhauma Bhattacharya explained for 7 days, on the 8th day, he was wondering, I've been speaking for 7 days and nights, and this sannyasi, he has not said anything. What is the problem? Then finally asked him, do you understand what I'm saying? Then generally, somebody who's listening, then they'll show something like, yes, yes, or there will be something that means that they don't understand or some question. But you haven't said anything in 7 days. So then, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said, I understand the Vedanta Sutra. I understand it very well. But your explanations, they're very, very confusing. He said that the Vedanta Sutra is brilliant, like the sun. Very, very brilliant and very clear. But your explanations, they're like dark clouds which are covering the meaning of Vedanta Sutra. That the Vedanta Sutra which has been presented, it should be accepted as it is, without changing, without adulteration. Mukhya Artha, the direct explanation should be given. But what you're doing, in every verse, you're presenting Gona Artha. You're presenting the secondary meaning. And this is completely warping on this word. He explained that in the Vedas, it stated that cow dung and conch shell, because their stool and bones of animals, that though in the Vedas it stated that though they are stool and bones of animals, but still they are accepted as pure. So it should be accepted as this, that cow dung is pure and crunch is also pure. But if you do not take the direct explanation of the Vedas, and then you put your own intelligence into it, then you think that, oh, cow dung is stool, and stool is impure, and the bones of an animal is impure. So even though the Vedas is saying that it's pure, but actually, and you give your own interpretation, and this is what you're doing, and in this way you've completely warped everything. So then, he explained that in the Vedas, it explains very clearly that Brahman, the Supreme, ultimately is a person. But you have presented that he is formless, that he is nirakar, nirshakti, near Gaul. But actually in the Vedic word explained that the Lord, that he does not have senses. It's explained that the Lord does not have material senses. But for instance, you'll say that the Lord, though not having material senses, but he sees everything. That the Lord, he does not have hands and legs, but he's able to reach and take anything or go anywhere. So it's simultaneously presented that he does not have material senses, but he has transcendental senses, and that he's a supreme sentient being. But you're not taking that, and you're completely warping everything. That ultimately, the Vedas are presenting that Brahman is the supreme absolute truth. He said, oh, you're presenting Brahman, 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 Brahman. But what is Brahman? Then he explained, Brahma Shakti Kahi Puna Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan Krishna Shastra Ekraman. That the word Brahman
Sarvam Bhattacharya Mahapur Mahapur Sarvam Bhattalap Chalche Mahapur Sarvam Bhattalap Chalche.
So then
you can be dance from an Aram Bhattacharya. After
dialogue
only dialogue between Sarvam Bhattacharya and Gopinath, not more.
So I've gone over what I was supposed to
say. After this, you told that Krishna is Swayam Bhagavan, Asam Aho Charan, Aho Bhagyam, Aho Bhagyam, Nanda Gop, Brajav Kusam, Janmitram, Paramanandam. Have you told?
Not yet.
Then what you told?
No, you are going step by step. Nice, you are telling.
Tathapi Dev Dev Padam Bhuj.
No, he was beginning, just beginning.
Abhi Aas Chilo.
Haan.
Aage, Narkan Uko Thay Se Gha.
Vedanta,
7
दिन
Vedanta पढ़ी थी। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य के निकट चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, मैंने बाल्यावस्था में संन्यास ले लिया है, मैं आपको गुरु के समान मानता हूं, आप मुझे वेदांत श्रवण करें। सुन करके सार्वभौम भट्टाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको वेदांत सुनाने लगे। इसके बाद में तर्क युक्ति इत्यादि वेदांत उपनिषद
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णवस्ताय तद्भक्ताय नमो सर्वप्रथम चक्राधीन गुरु का कर्मों में असंख्य कोटि दंडवत करण से किया मन सकता तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासी वृंद समस्त हस्त जान वैष्णव वैष्णव जान माताएं बहनों सभी को मेरा प्रणाम। अभी अभी गुरु जी ने आज्ञा दी है श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब कहा मैं कम उम्र के सन्यासी हूँ, मेरा सन्यास धर्म स्थिर अच्छा हो। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा सचिव तुम बालक हो और इस युग उम्र में ही तुमने सन्यास लिया, मेरे पास वेदांत अध्ययन कर, वेदांत श्रवण कर, तो इससे सन्यास धर्म की रक्षा हो। क्योंकि वेदांत में त्याग और वैराग्य की बातें बनती, त्याग वैराग्य की बातों से तुम्हारा संन्यास धर्म रक्षा हो। 7 दिन तक उन्होंने वेदांत पाठ किया सार्वभौम भट्टाचार्य ने, महाप्रभु जी उपचार सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। 7 दिन पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि हाँ क्या तुम्हारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ ना, तुम्हारे पास आज तक कोई प्रश्न ही नहीं किया। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? कुछ तो बोलोगे, कुछ तो बोलो। तब महाप्रभु जी बोले, हाँ आपने जो वेदांत की व्याख्या सुनाई है, वेदांत का सूत्र समग्र सूर्य जैसा, सूर्य की भांति सुनिर्मल है, प्रकाशी। परंतु जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो उस सूर्य को मानो काले काले बादल से ढक दिए। इसी तरह से आप बादल से ढकते जा रहे हैं, तो मेरे इसलिए समझ में नहीं बैठता, अच्छा भी नहीं लगता। तो काले बादल के बाद सूर्य शहर सारा भट्टाचार्य एकदम गर्म हो गए। क्या अब तो इधर राम सके कभी सारे भट्टाचार्य इतने बड़े विद्वान और उनकी व्याख्या के बाद काले बादल कैसे तुमने बता दिया? फिर प्रशांत ने कहा, जोर कर दिखा। चैतन्य महाप्रभु जी बोले कि वेदांत के पहले सूत्र ने अर्थातों ब्रह्म जी किया था। वेदांत में ये सारे पांच सूत्र है, उनमें प्रथम बारह सूत्र जो है मेन मुख्य माना जाता है। अर्थातों ब्रह्म जी किया था, ब्रह्मा को सृजत शास्त्र जो ही द्वार तत्व समन्वया इच्छते ना शब्द हम गौण से गति सामान्या महाप्रभु जी बोले अगर अनंतर हम ब्रह्म की जिज्ञासा, आपने ब्रह्म की व्याख्या देते हुए कहा ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार से, एक ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष निस्सत्य निष्क्रिय निरंतर और सगुण ब्रह्म सोपाधि माया रूपी उपाधि के द्वारा युक्त होकर वे कृष्ण राम नृसिंह वामन आदि रूप में अवतरित होते हैं और इस भौतिक देह को छोड़कर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते और हम सभी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म में
जी भी
लीन हो जाएंगे। जी ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बराबर है। जी ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं। सभी जीव अपने को भ्रांत समझ रहे हैं। आपने बताया बड़ा सहज उदाहरण आपने प्रस्तुत कर दी क्या, जैसे आप सभी लोग जानते हैं सोने का आभूषण और सिर से पैर तक कितने आभूषण है, सभी सोने का है पर सबका नाम और रूप अलग अलग है। सभी को लेकर के ये आज में डाल दी जाए क्या होगा? सोने का गोला बन गया, घेरा बन गया, उसका कोई नाम रूप नहीं था। इसी तरह से फिर जब कारीगर ने उसको बनाया, कोई कुरावनी बन गया, कोई अंगूठी बन गया, गले का हार बन गया, नाक का बेसर बन गया, चूड़िया बन गई, कंकर बन गया, पैर का पैजेब बन गया, कमर की कसनी बन गई, कितना नाम और रूप बन गया पर सब मिला देने पर एक ब्रह्म की नाम थी। ऐसे सभी कुछ ब्रह्म है, अभी हम माया के द्वारा नाम और रूप से भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न रूप से परिचित हो रहे। सभी मिलकर हम सभी एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यह आपने बताया। परंतु आप बताइए ब्रह्म निराकार निर्विशेष निर्गुण निस्सत्य निष्क्रिय निरंजन आपने जो कहा है, ब्रह्म शब्द बनता है होता है ब्रह्म जो सर्वप्रियर है, दूसरों को बड़ा बनाने की क्षमता जो रखते हैं, उन्हीं को ब्रह्मोत्तम कहा गया है। दूसरी ओर श्रुति ने कहा है जतो बहिमानी भूतानि जायन्ते देह जपानि जीवन्ति जब प्रजन्त विषम विषन्ति तद्वि जिज्ञासस्य तद्ब्रह्म, जिनसे समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, जो सभी का पालन कर रहे हैं, अंत में प्रलय होने पर सभी जीव उन्हीं में समा जाते हैं, वही जिज्ञास ब्रह्म है। विष्णु बुरा जो सबसे बड़े हैं, दूसरों को बुरा बनाने की क्षमता रखते हैं, ऐसी वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। और आप इस ब्रह्म शब्द में यहां ब्रह्म की शक्ति को ही नहीं किया गया और शक्ति का परिचय मिल रहा है, उन्हीं को आप निर्गुण ब्रह्म निशक्ति निराकार ब्रह्म कह रहे हैं। जिन्होंने संसार को प्रकृति को इतना रूप दिया, इतने रूपों में सृजन किया, सभी को अलग अलग रूप में और प्रकृति के गुणों से अग्रणी रूप से सभी रूप युक्त हो करके आ रहे, उनका कोई रूप नहीं है। जो अनंत कल्याण गुणों के आधार सभी उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए प्राप्ति लालित है, उनको आपने निर्गुण बताया। क्या यह श्रुति में नहीं है? नतस्य कार्यं करणं च विद्यते नतः समस्याभ्यधिकस्य तिष्ठति परास्य शक्ति विधिवैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च कोई प्राकृत कार्य प्राकृत इंद्रिया प्राकृत देह मन प्राण ये सब है नहीं, उनका जो कुछ है सभी कुछ अनंत अप्राकृत स्वरूप अप्राकृत मन अप्राकृत बुद्धि सभी कुछ चिन्मय बताया गया है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह सच्चिदानंद विग्रह, इसमें आपने कैसे बताया, कैसे सिद्ध किया? परसों भी हमने बताया था उनसे एक पहले पहले कि अरूप और एव ही तत्प्राधान्य हुआ, अरूप और एव ही भगवान रूपवान गुणवान है या नहीं, सभी जानते हैं भाई ये कोई व्यक्ति है, बड़ा सुंदर व्यक्ति है, बड़ी सुंदरी व्यक्ति है, इतना की कार्य सुंदर जगह कि रूपवान है गुणवान है रूपवती है गुणवती है, जिनके अंदर रूप है जिनके अंदर गुण है उन्हें गुणवान रूपवान कहा जाता है। परंतु क्या भगवान रूपवान गुणवान है? बोले नहीं। और वेदांत में लिखा कि अनुभवान भगवान रूपवान नहीं है गुणवान नहीं है, तो क्या है भगवान रूपवान गुणवान नहीं है तो क्या है? तब प्राधान्य हुआ। बोले रूपवान कहने से कभी रूप आया और कभी रूप नहीं है, गुण जिसने है उनको गुणवान कहा गया, भगवान गुणवान रूपवान नहीं है भगवान स्वयं रूप है, स्वयं रूप में शब्द रंगा भगवान स्वयं रूप है, वह अनादि सिद्ध रूप है, वह कभी प्राप्त हुआ कभी नहीं था, कभी निराकार कभी साकार बन गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए ऐसे सिद्ध किया तत्प्राधान्य का ही प्राधान्य भगवान स्वयं रूप है। अरे जहां उनका स्वयं अनंत सिद्ध रूप है अनंत सिद्ध गुण है अप्राप्ति को अनंत कल्याण गुणों के आधार है, फिर उनकी शक्ति का वर्णन परा अस्त शक्ति विधि उनके इतनी बड़ा शक्ति जो है वो विविध प्रकार से सुनी जाती, बहुत सी शक्तियां है, शक्तियों का विकास है, वह स्वाभाविक ही मात्री लोहे को अग्नि में डालते हैं, उस देश के लिए लाल हो जाएगा। उसको छू नहीं सकता है, परंतु कुछ समय बाद जब कि वो अग्नि से निकाल दे, थोड़े दिन में ठंडा हो गया, अब आग नहीं है, तो तादात्म्य की, भगवान की शक्ति तादात्म्य की नहीं है, स्वाभाविक की, स्वाभाविक का नित्य सिद्ध स्वाभाविक की शक्ति, उसको वस्तु से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, उसी कारण है स्वाभाविक। तो ब्रह्म की स्वाभाविक यहां शक्ति है, उनको तादात्म्य की कैसे कहा जा रहा है? कहां से आपने लक्षण लगाई? क्या आप श्रुति को मानते हैं? जब श्रुति की व्याख्या आप करके दिखाई, परास्त शक्ति स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से भगवान सर्वशक्तिमान अनंत कल्याण गुणों के आधार, इसलिए श्रुति ने कहा है जा जा श्रुति दंपति निर्विशेषम सा सारी धर्त सविशेषम एव वा। जो जो श्रुतियां ब्रह्म को निर्विशेष रूप में वर्णन कर रही है, वही श्रुतियां सविशेष रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही, इसलिए प्रायो बलीय सविशेषा में सविशेष ही प्रधान और बलवान है। अतः निराकार निर्गुण कहे जाएंगे, उनके अस्तित्व को अस्वीकार करना अत्यंत भ्रांत धारणा है। जी ब्रह्म भ्रमित होकर के जीव बन गया, ये विवर्त हुआ, परंतु ब्रह्म पर यदि भ्रम हो गया, ब्रह्म पर यदि अज्ञान लग गया, तब अज्ञान एक पृथक वस्तु है, जो कि अज्ञान ब्रह्म को आच्छादित करता है, कदापि संभव नहीं है कि ब्रह्म अब अज्ञान बना हो गया, माया बनी है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म को अज्ञान स्पर्श करता है, जब ब्रह्म ज्ञान ही नहीं हुआ। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान कर्म ब्रह्म, आनंद आनंद ब्रह्म और ज्ञानम ब्रह्म, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए श्रुति के वाक्य में सिद्ध करते हुए आनंद आनंद आत्मा प्रज्ञानम आत्मा, जो कि प्रज्ञान ब्रह्म है, उनमें कभी अज्ञान का प्रवेश नहीं हो सकता है। भ्रम किसको होगा? ब्रह्म यदि निराकार निर्विशेष है, कोई वस्तु ही नहीं है, तो किसको भ्रम पैदा हुआ? ये समस्त भ्रांत बातें और गलत तरीके से बताया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। वास्तविक बात कराई वो शब्द जो कि करते हैं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जन्म आदि सृष्टि स्थिति प्रलय आदि होता है। तो ये विश्व संसार सभी कुछ असत्य है, मिथ्या है, कल्पना है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। ब्रह्म सत्य जगत सत्य, परंतु जगत तात्कालिक परिणाम। इसी तरह से प्रमाणों में बताया है कि प्रमाण 10 प्रकार के हैं, अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आश्रय संभव ऐतिह्य अनुपलब्धि चेष्टा अद्भुत शब्द प्रमाण। परंतु सभी प्रमाण जो है भ्रम प्रमाण कर्णपातक और विपरीत, इन चारों दोषों से युक्त है। परंतु श्रुति वाक्य ऐसा है जो अनादि परंपरा से यह श्रुति सिद्ध श्रुति वाक्य भगवान के निश्वास मुक्त वाणी और इस स्मृति को सभी लोगों ने मान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जो कि गुरु परंपरा प्राप्त स्मृति वक्त चारों प्रकार के दोषों से नहीं जो कि श्रुति वास्तव पर ही एकमात्र सामान्य स्वीकार किया है। अबे शास्त्र सिद्ध श्रुति सिद्ध ब्रह्म को जानने का एकमात्र उपाय इसी तरह से इच्छते ना शब्द श्रुति के शब्द आया है इच्छते क्या भगवान दिखे जाते हैं कोई किसी ने भगवान को देखा है ब्रह्म को बोले हाँ देखा इच्छते ना शब्द जो प्राप्त मनुष्य है श्रुति ने कहा है कि ये मन वाणी बुद्धि कुछ भी उनको प्राप्त नहीं कर पाते इसलिए सब लौट के आ जाती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है ना देखा जाता है। अप्राकृत मनुष्य अप्राकृत शुद्ध इंद्रिय मन वाणी के विकूल प्राकृत इंद्रियों के द्वारा विकोचर नहीं है ना शब्द वाच्य नहीं है ऐसे भी नहीं कहा जा सकता है। इच्छते त्यागी ने कहा इच्छते भगवान को देखा जाता है जब प्रेम भक्ति हो प्रेम नजर में भक्ति के भक्ति रूपी नैनों में जब प्रेम का काजल लगता है तब तो प्रेमान्य छुरी तो भक्ति भी ये वास्तव है किरदार है तो ऐसे नहीं देखा जाएगा। एक सके ना शब्द गौण से यदि वह ब्रह्म गौण ब्रह्म सगुण ब्रह्म माना जाए तो बोलेगी ना आत्म शब्द वो सगुण ब्रह्म या गौण ब्रह्म नहीं है आत्म शब्द से ब्रह्म आत्म ही कर्तव्य ब्रह्म और आत्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान का शरीर और उनका उनकी आत्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारे देह और आत्मा में पार्थक्य है पृथकत्व है जीव के देह और देही आत्मा में पृथकत्व है परंतु भगवान का स्वरूप और भगवान की आत्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है यह दिखाया गया है। इसी प्रकार बोले कि गौरस्य न नहीं गौर ब्रह्म नहीं हो सकता है सर्व ब्रह्म सही निर्गुण और सगुण किसी ने कहा प्राकृत गुणों से अति अप्राकृत अनंत कल्याण गुण युक्त व्याकरण के सूत्रों में प्रपर उपसर्ग इत्यादि 20 उपसर्ग कहे गए हैं। मौलिक शब्द के साथ उपसर्ग को जोड़ करके अर्थांतर किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द जो है मौलिक शब्द गुण में निर्गुण शब्द हुआ तो ये उपसर्ग लगा करके प्राकृत गुणों से अतीत होने के कारण अप्राकृत अनंत कल्याण गुणों के आधार भगवत स्वरूप में ऐसी बात नहीं हो सकती है। गति सामान्य समान रूप से सबकी गति वासुदेव परावेगा वासुदेव परामुखा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परा गति सबकी गति अंतिम क्या है भगवान वासुदेव। यह भगवान कृष्ण ने गीता में भी दिया उनका संदेश है हे अर्जुन बहुनाम जन्मनामंति प्रचार करके उन्होंने अपने से ही चार वाक्य सिद्ध कर दिया। श्रुति के चार वाक्यों को शब्दों को कुछ अक्षरों को काट काट करके उन्होंने एक महाभक्त बना लिया जो कि प्रज्ञान ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं खलिलो लोको। ये चार महाभक्त था परंतु जबकि हाजरी बैठी रीति रिवाज में कोई भी ब्राह्मण भारत बिना उपनयन लिए ओम का उच्चारण किए बिना कोई भी मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते और भी बिना विधेय मंत्र बीज मंत्र का उच्चारण किए कोई मंत्र जप करे उच्चारण करे तो उसके निष्फल माना गया है। ओम का और प्रत्येक मंत्र के बीज का उच्चारण करना पड़ेगा। बीज के बिना वृक्ष नहीं वृक्ष के बिना फल भी नहीं। अतः बीज पहले बीज इसके बाद वृक्ष जब सभी की आबादी परंपरा है पहले बीज है या वृक्ष है वृक्ष से बीज बनता है बीज से वृक्ष बनता है। तो इसलिए यह अनंत परंपरा जो है ये भगवान कृष्ण संसार का बीज है इसलिए संसार वृक्ष भया संसार वृक्ष का आदि बीज भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। बिना बीज के नहीं चलता है इसलिए वेद में ओम पर ही बीज कहा गया प्रणाम कहा गया है। ओम यही है बीज जो कि वह ओम से ओम हुआ है। पद्म पुराण में कहा है ओंकारेण उच्यते विष्णु श्री ओंकारेण उच्यते मकार से जीव साधन जीव को कहा गया तीनों का सम्मिलित स्वरूप ये ओंकार है। बिना ओम को धारण किए ये जगत धारण नहीं होता है इसलिए वेदों में सर्वशास्त्रों में शक्ति परिणाम और ओम को प्रणाम के रूप में स्थापित किया है। इसी प्रकार महाप्रभु जी ने उनके एक एक विचारों को खंडन करते हुए उनको समझकर सिखाया।
अंत में बोले आत्मा रामस्यम
अंत में उन्होंने आत्मा रामस्यम महाप्रभु जी ने कहा भागवत में क्या लिख रहे हैं आत्मा रामस्यम निर्ग्रस्त अपरूप्रवे कुर्वन्ति आयतुकेन भक्ते इच्छा पुत्र गुरु हरि। भगवान श्री हरि का इस प्रकार बोल में जिन गुणों के द्वारा आत्मा राम मुनियों को खींच रहे आकर्षण और मुनियों मुनियों को निर्ग्रस्त जिनका कोई बंधन नहीं। यहाँ टीका में भी वर्णन हुआ है कि आत्मा राम मुनियों को जो आत्मा में रमण करने वाले थे सुखदेव जी मुक्त गुरु जिनको संसार से किसी पत्नी से किसी से कोई मतलब ही नहीं है आत्मा राम मुनियों ने वर्णन थी चिंता को बढ़ाया और निर्ग्रंथ था जिनके जीवन में कोई विधि निषेध नहीं कोई कार्य नहीं कर्म बंधन संसार बंधन माया बंधन कुछ भी बंधन नहीं मुक्त पुरुष और निर्ग्रंथ जिनको शास्त्र ग्रंथ और अध्ययन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी ऐसे सुनते हुए उनका भी जीवन मुक्त गुरु उनको भी आकर्षण कर लिया। केवल ये सुनते हुए उनका भी नहीं जितने भी भगवादी ऋषि है मुनि है सभी को उन्होंने अपने गुणों के द्वारा आकर्षित कर लिया। इस प्रकार सभी तो मन सुंदर से स्तुति पाठ करते हैं।
तो बोलो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोले
व्याख्या सुनना चाहते
आप व्याख्या करो। उन्होंने नौ प्रकार किया महाप्रभु छोड़कर के 16 अर्थ थे
18 प्रकार।
तो इस प्रकार सार्वभौम महाप्रभु जी ने उनको कहा अभी इस प्रयोग का अर्थ कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने नौ प्रकार का अर्थ सुनाया। उन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा पंडित हूं दिखा महाप्रभु जी बोले सुनिए उन दो प्रकार के छोड़ करके 18 प्रकार की व्याख्या सुना दी। सारा भ्रष्टाचार के शेर को तो हाथ पड़ गया सरवरा आधे के से आप धन गांव दिया भाई तो बड़ा चौंकार दिखा दी। और फिर उनका जो अहंकार अभिमान था पांडित्य का सहज चूर्ण विचूर्ण हो गया। तब वे महाप्रभु जी के चरणों में गिरे। जब वे बार बार प्रणाम करने लगे महाप्रभु जी ने भी कृपा करके उनको सरभुज रूप दर्शन करा दिया। त्रेता में जो राम रूप धनुष का हाथ में लिए हुए द्वापर में उनकी विलास से श्री कृष्ण आज कली में गोदान महाप्रभु दर्शन प्रमण करके था तीनों का ही सरभुज रूप दर्शन करा करके दिव्य चमत्कार जब दिखा दिया उस समय सारा भंडाचार्य राम से उनके चरणों में गिरे। प्रभु ये हमने क्या दिव्य रूप दिया। तब उन्होंने महाप्रभु जी के चरणों में भारत मार प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौधरि के रूप में आप स्वयं अवतरित हुए हैं। आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हम आपके शरण। इस प्रकार महाप्रभु जी ने सारों वर्ण कार्य कर कृपा अनुग्रह प्रकट किया।
महाप्रभु बिटवीन सारव भट्टाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु सारव भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु हैड टेकन संन्यास इन अ वेरी अर्ली एज सो देयरफॉर ही सेड दैट चैतन्य महाप्रभु दैट अनलेस यू स्टडी वेदांत नॉलेज रिनाउंसिएशन विल नॉट अपीयर इन योर हार्ट So therefore, I am going to explain to you the Vedanta, the conclusion of the Vedas. So for 7 days, he was commenting on the aphorisms of Vyasadeva, or Vedanta Sutra, Brahma Sutra. But Mahaprabhu kept quiet. Day and night, he was explaining, but Mahaprabhu didn't speak anything for the 7 days. So then Sarva Bhattacharya asked him, are you able to understand something? Why don't you speak anything? Why don't you speak something? So that time, Mahaprabhu told him that actually the meanings of Vedanta, they are very bright and shining like the sun. But your explanations, they are covering this sun by the dark clouds. As soon as Mahaprabhu told that my explanations are like dark, your explanations are like dark clouds, Sarva Bhattacharya became furious. He said, if you are saying that my explanations are clouding the effulgent sun of the meanings of Vedanta, then you should explain yourself. Then Mahaprabhu told that there are 12 primary aphorisms and total there are 550. And he said there are starting from number 1, Dharmata Seto, Shastra Yaritva, Prati Samanya, Anandamaya Abhyasa, and then Athato Brahma Jnyasa. So he quoted the 12. So there it is explained. So Brahma is Sagur and Nirgun. And Sagur Brahma actually manifests as Nursinga Varaha Kurma. And there is Nirgun Brahma, which is shapeless, formless. So here to me, Sarva Bhattacharya was telling that although Brahma appears in so many forms, like Ram, Nursinga Kurma, But ultimately, all these forms, all these sagun forms, these qualitative forms, ultimately merge in unqualitative formless Brahman. So he said that Brahman Satya Jagan Mitha Jiva Brahman Adhara, that Brahma is truth, the impersonal Brahman is truth, the world is false, and Jiva is nothing but Brahman. He gave the example, Sarva Bhattacharya had given the example, just like you make many different ornaments from gold, you can make rings, you can make girdles, you can make ankle bells, and you can make bangles. So when you heat up the gold, it melts, and from molten gold you can make so many ornaments. But later on, all the ornaments can be remolded and make into a ball of gold again. And again this ball of gold, molten gold can be converted back into all these ornaments. So like that, everything is Brahman, but now it has become jiva. So this was Anubhava Bhattacharya's explanation. So that time Mahaprabhu told that Brahma is coming from the dhatu, Brahman dhatu. So it is, and it is also the pratyaya Brahma. It is the greatest of all. It has the ability to increase others in size, means expand others and empower others. So he said that Brahma is actually from which the world is created, by which the world is maintained, and by which the world is annihilated. So this is explained in the Shrutis. So it is explained in Vishnu Purana that Bhrungayati, Bhrungati, Bhrungayati, and he expands everyone, he increases everyone in size. So Brahman has potency to increase everyone in size. So how can this Brahman be nirgun and nikshaktik? How can be without any potency? The Brahman must have potency, otherwise he would not be able to expand other objects in size. Also, Brahman has given the shape to everyone and every living entity, and all the objects are then given shape by Brahman. All the objects in the material nature and spiritual nature are given shape by Brahman alone. So how can that Brahman, which is the origin of all the shapes, Brahman, if that Brahman, how can it be formless and shapeless? So this Brahma is actually the basis of unlimited good qualities, and it bestows unlimited welfare on everything. How can it be nirgun? Because it is the basis of all qualities, this Brahma cannot be nirgun. Also it is said, Parashaktir Vividarga Shriyate Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. In Shruti also explained that Brahma has potencies, Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. There are different potencies which Brahma has. And Brahma is also Sachidananda Dhana Vigraha. Brahma is embodiment of knowledge, bliss and eternity. It is a concentrated embodiment. So Arupavat Tat Pradhanna. It is explained in Vedanta Sutra that Bhagavan is not Guni or Rupavan. So when you say Guni or Bhagavan is Rupavan, then the Rup has beginning and has end. The form comes from something and then the form disappears. Or the qualities manifest and then they become unmanifest. But it is said that Bhagavan is Arupavat. Arupavat means that his form, Bhagavan is Swayamru, his form has no beginning. It is Anadi Siddha, it is eternally perfected or eternally manifested. And all the forms come from him. So therefore it is said that Tat Pradhanyatva, that he is Swayamru and he is form is Anadi Siddha, beginningless and eternally perfected form he has. So he is Ananya Siddha Rup and Ananya Siddha Gun. His form is eternally perfected and beginningless. His qualities are also eternally perfected and beginningless. So it is explained in the Shruti, Parasa Shakti Vividarga Shruyate Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. Then Sarva Bhattacharya had said that Brahman's potency is Tadatmiki. Tadatmiki means, suppose you put some piece of iron in fire, then later on that iron will become red hot. So when it is put in the fire, the iron is no more iron, it is fire. So this is an acquired potency. So therefore, but Bhagwan, actually Bhagwan's potency is not Tadatmiki. Bhagwan's potency is so. Bhagwan's potency is Swabhaviki. Bhagwan is Shaktiman and he has inherent potency. Therefore his potency is Swabhaviki. It is naturally present within him. It is ingrained within him. So Ananta, he is the basis of unlimited auspiciousness. So this has been explained in Shrutis that Brahma's potency is Swabhaviki. Also it is explained in the Shruti, wherever Brahma has been described nirvishesh, without qualities, the same place, later on it is explained that Brahma is also Savishesh. So it means that Brahma is actually Savishesh and is possessed of strength. If someone will say that Brahma is nirvishesh, it is actually deluded. Also sometimes, so Sarva Bhattacharya had told that everything is Brahma, but due to the illusion, it appears that the Brahma has become Jiva due to the designation of Maya. So this is actually Vibhartavada. If it is said that Brahma can be covered by Maya, then how can Brahma, if everything is Brahma, then how can Brahma be all potent and how can it be stronger than Maya? If Brahma is possessing all the potency, it cannot be covered by Maya. Second thing is that if ignorance can cover Brahma and make it into Jiva, the living entity, then ignorance is a separate object. It is said in the Veda that Sarvam Sabiram Brahma, if everything is Brahma, where did the ignorance come from? So is Maya stronger than Brahma? If Maya is greater than Brahma, that the Maya has the ability to cover Brahma? It is also explained, Prajnanam Brahma and also Anandamaya Brahma. Brahma is full of knowledge and Brahma is full of bliss. So if Brahma is full of knowledge and full of bliss, how can Maya, which is very embodiment of ignorance, cover this Brahma, which is full of knowledge? So, Anandamaya Atma, Prajnana Atma, this Atma is full of bliss and this Atma is full of knowledge. So therefore, where did this Brahma come from? Where did this illusion come from? So in this way, wrong explanations were given by Sarvam Bhattacharya of Vibhartavada and he had covered the correct explanations. So other aspect is the Om. Janma Dasyataha, everything comes from Brahma. He is the source of everything. From the creation, maintenance and annihilation takes place by Brahma alone. Brahma alone. So this material world is a temporary transformation of this Brahma. Another thing is that all the Shruti Vakyas, there are different evidences. But for example, there is Pratyaksha, means direct evidence. That's something that is perceptible by our senses, mundane senses. Second thing is Anuman, inference. Then there is another total 10 evidences are explained in the Vedic scriptures. But the most important evidence is Shabda Praman. Because Shabda Praman or the Vedic evidence is actually free from four defects: Brahma, Pramar, Karna Patav and Vipralaksa. So Shruti Vakya or the words of scriptures, they are free from propensity to cheat, mistakes or illusion. So therefore, accepting the Vedic knowledge which has descended in disciplic succession is the topmost evidence. Shruteya Shabda Mulatva. So, it is explained in Vedanta Sutra that the words of scriptures are the original root of this evidence. Also, Brahma, can it be seen? Can it be seen by modern eyes? Actually, Brahma is agochar, is inconceivable to one's ears, one's mind, one's words, one's tongue, one's intelligence. Because Brahma is aprakrit, it is not conceived by one's mundane senses, by one's mundane mind, one's mundane tongue, and one's mundane intelligence. But when one's mind, one's tongue, one's intelligence is transcendentalized, then by those transcendental eyes, by that transcendental mind and those transcendental words, we can perceive Brahma, we can see Brahma. So Brahma, the Shabda Vakya Kshate, only by the words of the Shrutis and the revealed knowledge in the disciplined succession, Brahma can be seen. It is explained that Premanjana Chavita Bhakti Vilojanena Santa Satayuru Deyoshi Vilayanenji the Shama Sundaram Ajinta Guna Surukam Govinda Madhikurusham Pramam Bajami. When one's eyes of devotion are anointed by the kajal, by the coquelinum of love, then such eyes which are now transcendental eyes by the potency of love, they can see the Brahma. Now Brahma is Gaura Brahma or Saguna Brahma. This is not a Gaura Brahma. Gaura Brahma means it is not the Brahma which is under the influence of the material qualities, or it is not the Brahma which is possessed of the qualities, mundane qualities. Also it is explained that Atma Shabda, actually Brahma and Atma, there is no difference. Just as in Brahman, there is no difference between Brahma's Swarup and Brahma's Atma. Because for Brahma, the Swarup and Atma are the same. Just as for us, there is a difference between Deha and Dehi. Our body is different from our soul. When the soul leaves the body has no value. However, in the case of Krishna, in the case of Brahma, in the case of Bhagwan, Bhagwan's Swarup is same as Atma. So there, Deha and Dehi difference does not exist in Bhagwan. So through Vedanta, we can see Bhagwan. There is no difference in the body and soul of the Bhagwan. And also Brahma has no material qualities. All his qualities are transcendental qualities. And therefore, in word Nirgun, when the Brahma is described as Nirgun, it means there is a upasarga, there is a prefix for nil, means without. So when you say he is without qualities, actually it means that he is without any mundane qualities, but he is indeed endowed with unlimited number of transcendental qualities. Also it is explained that Vasudeva Paragati, Vasudeva Parakriya, ultimate shelter is Vasudeva. So Bhavanam Charmana Mante Jnanavanam Prapatyate Vasudeva Saramiti Samahatma Sudhadeva. After billions and billions of lifetimes practicing sadhana bhajan, a very great personality will realize that Vasudev is the ultimate shelter. The lotus feet of Vasudev is the ultimate destination. So such soul is very rare. So it is explained Anandamaya Vyasa. So there is in Brahma, it is not devoid of bliss. Brahma is blissful by nature and is devoid of any distress. The Maya Pratyaya is used in Ananda Maya. So this suffix Maya to the word Ananda has two meanings. One is Prachurya Maya and one is Vikara Maya. Prachurya Maya is explained that suppose you take some lots of water and pour it in a room, then that room is filled with water. Or you take lots of cow dung and plaster the whole house with cow dung, then it is full of cow dung. So this is the Prachurya Maya meaning. Another thing is that you say that this house is now Jalamaya. So it means that the whole house has become water. This is actually the Vikar. So that is wrong to say so. Actually, So Mitti is from clay to make a water pot. So clay is called Murudamaya because it is made of now the water pot is made of clay. So here it is Vikar. So Brahma Vikari, Brahma is actually Anandamaya. Brahma is not the transformation. Actually it is said that Brahma is actually full of bliss. So this is the Prachurya Maya meaning has to be taken. Just like there is a lot of water is poured in the room. So now the room is full of water, but the room has not become water. So similarly, here when we say Anandamaya Brahma, it means that Brahma is actually full of bliss. The Prachurya Maya meaning is the that meaning. So this Brahma is unlimited. So Brahma actually remains without any transformation, but Brahma has potencies, and by his potencies, the Brahma manifests jivas and the jada prakriti. So the living entities and the material nature is manifest from the Brahma. It is said in Bhagavad Gita that jiva bhuto mahabhavo yayatam bharate jagat aparastha vitastha anya prakriti vidhi me param jiva bhuto mahabhavo yayatam bharate jagat. So earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego, this is the lower nature, this is the jada prakriti. But beyond the jada prakriti, there is the jiva prakriti. That jiva prakriti is maintaining this world. Yayatam bharate jagat. So jiva is nothing but the potency of Brahma. So Brahma has different potencies, and from those potencies, this living entities as well as the material world has been manifested. So this is actually the Shakti Pranamba. For example, this is the transformation of the potency of Brahma. This is called Shakti Pranamba. Just as mani and mantra, for example, there is a jewel. The jewel has the potency, and jewel can bring lot of changes and show lot of effects, although the jewel itself is not transformed. The mantra will never be exhausted, but mantra can bring about lots of changes and has lot of power, and although the mantra and jewel's power are never exhausted, similarly Brahma has many potencies, and those potencies keep on working, but original Brahma remains free from transformation. So here Mahaprabhu is explaining, this is Shakti Pranamvar, that Brahma itself does not transfer and become the Jada Prakriti or Jiva Prakriti, but Brahma's Shakti acts, and from that Shakti, this Jiva Prakriti and Jada Prakriti is manifested. So Shankaracharya's philosophy that was explained by Sarva Bhattacharya mentions that Pratnyanam Brahma, Aham Brahmasi, Tattvamasi, Sarvam Bhavidam Brahma, these are four Mahavakyas. However, Sri Chaitanya Mahaprabhu explained that the real conclusion of the Vedas and the real Mahavakya, the real great aphorism in Vedas is the syllable Om. This Om is called Pranava. And unless when a boy will get initiated in the twice born ceremony, in the second ceremony, he will get the mantra Om. And it has been explained in the scripture that Vina Bijaya Mantra Nishvaram Bhave. That any mantra which is chanted without the bija, such as Om, will not be fruitful. So unless there is a seed, bija means seed. So Om is the seed mantra. So unless there is a seed, there cannot be any tree. So from the seed comes the tree, and from the tree will again fructify and will give the seeds. So this is the beginningless chain of succession. This is the successive chain of transformation. So the bij, the root, the seed of this creation is Sri Krishna. So without the bija, without the seed, there cannot, nothing can happen. So this seed is Om. The Om sound has three syllables. That is A, U and Ma. It is explained in Padma Puran that A represents Vishnu, U represents Shri, and Ma represents the living entity. In other words, A means Krishna, O means Radha, and Ma means the sadhaka jiva who is practicing to get perfection. So from this it is explained that Om actually is the Pranava and is the Mahavakya. So Mahaprabhu established this Shakti Pranava. Later on, Mahaprabhu wanted to discuss. He told Sarva Bhattacharya, please discuss the verse Atma Ramascha Manayo Nirgrantha Pyaruttame Kurvanti Ahitukam Bhakti Uttam Bhuta Manahari. So Bhagavan is Atmaram. Author is Atmaram. He is self-satisfied. He attracts the hearts of the all the... He actually attracts the heart of other Atmaramas like Shivdev Goswami. Shivdev Goswami was absorbed in meditation on impersonal Brahma, and he was free from all types of material bondage or material fruitive activities, and he has no need to study any scriptures. So he was a first class Brahmavadi. But Bhagavan attacked the heart of Shukdev Goswami, four Kumaras and so many others. So even Madhusudan Saraswati has described this. So there are nine meanings. So then Mahaprabhu explained, requested Sarva Bhattacharya to explain the meanings of different meanings of this verse Atma Ramascha Manayo. Rama Bhattacharya was actually not different from Brahmaspati, explained 9 meanings of this verse. But Mahaprabhu explained 18 more meanings, not touching even one of the meanings previously explained by Rama Bhattacharya. In this way, Mahaprabhu stunned Rama Bhattacharya. And then, to further solidify his position as the Supreme Personality of Godhead, Srimad Mahaprabhu exhibited the 6 arm forms. His 2 arms belong to Lord Ramchandra, who appeared in the Treta Millennium. His other 2 arms belong to Sri Krishna, who was playing flute and who appeared in Dwapara Millennium. And his other 2 arms appeared of Gauranga Mahaprabhu and have carrying Kanda and Kamandalu, the water god of an ascetic and ascended star. So seeing this, Sarva Bhattacharya was stunned and with a big thud he fell on the ground unconscious. And when he came back to consciousness, he offered repeated obeisances to the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he said, he composed 100 verses called Chaitanya Shatakam. The first verse of that composition is called Vairagya Vyakti Anija Bhakti Yoga Shiksha Taikam Purusha Purana Sri Krishna Chaitanya Sharira Dhari Srimam Budiham Tamam Prapate. That to teach the world the knowledge of renunciation, that is Srimad Bhagavatam Vairagya Vidya, Sri Chaitanya Mahaprabhu has appeared in this world. He has accepted the name Sri Krishna Chaitanya and repeatedly offered obeisances to his feet and has surrendered to him. Panchakalpa Guru Vaishnava.
काल का सकाल बोल तो होगा
वरुवाणी।